हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णा सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह नष्ट दृशामेश पुराण अर्क अधुना उदितः। श्रीमद्भागवतम से पाठ अष्टम स्कंद अध्याय 6 देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा। इस अध्याय के आज 19 नंबर श्लोक ब्लैक बोर्ड में लिखा गया, लेकिन पहले से 16, 17, 18 क्योंकि तात्पर्य नहीं है लिखा नहीं, तो 16, 17, 18 में पढ़ रहा हूँ, फिर बाद में 7 में 19 नंबर दोहराएंगे। 16 नंबर श्लोक श्री शुको वाच, आपको 19 नंबर आवृत्ति करना है, नहीं तीनों में खुद पढ़ते हैं। एवं विरंचादीभिर्वितस्त विज्ञायते संहृदयं यथैव जगादजिग्मूत गभीरयागीरा बद्धांजलिं संवृत सर्वकारकान्। सुखदेव से सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जो ब्रह्मा समेत सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति की तो वे उनके वहाँ आने का प्रयोजन समझ गए, अतः भगवान ने बादल की गर्जना के समान गंभीर वाणी में उन देवताओं को उत्तर दिया जो हाथ जोड़कर सावधानी से वहां खड़े थे। कहाँ खड़े थे? देव क्षीरसागर के किनारे। एक ईश्वर तस्मिन् सुर कार्ये सुरेश्वर विहर्तु कामस्तानाह समुद्रं मंथनादिभि। यद्यपि देवताओं के स्वामी भगवान देवताओं के कार्यकलाप को स्वयं संपन्न करने में समर्थ थे, फिर भी उन्होंने समुद्र मंथन की लीला का आनंद उठाना चाहा, अतः वे इस प्रकार बोले। श्री भगवान उवाच, हंत ब्रह्म त्रहो शंभो हे देवा मम भाषितम सुनुता वहिता सर्वे श्रेयो वह स्यात् यथा सुरः। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा सी तथा अन्य देवताओं, तुम सभी ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनो, क्योंकि मैं जो कुछ कहूँगा उसमें तुम सबका कल्याण होगा। ये तीनों श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी अपने टीका में तीनों श्लोक के ऊपर तात्पर्य नहीं लिखे, प्रभुपाद ने भी नहीं लिखे, तीनों श्लोक छोड़ दिए। तीनों श्लोक में देख रहा था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी तीनों श्लोक के ऊपर कोई तात्पर्य नहीं लिखे, तो प्रभुपाद ने भी तीनों श्लोक को छोड़ दिए। फिर चौथा 19 नंबर श्लोक में प्रभुपाद के तात्पर्य है। या तदानव दैत्ययैः संधि विधीयतां कालेन संधि विधीयतां कालेनानुगृहीतैर्तैर्यावत्वभवात्मनः यातदानवदैत्यैः स्तावत्सन्धिर्विधीयताम् कालेनानुगृहीतैर्यावद्भवात्मनः। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, जब तक तुम उन्नति नहीं कर रहे तुम सबको दानवों तथा असुरों के साथ संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि संप्रति समय उनके अनुकूल है। किनके अनुकूल है दोहराइए, जब तक तुम उन्नति नहीं कर रहे तुम सब को दानवों तथा असुरों के साथ संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि संप्रति समय उनके अनुकूल है। तात्पर्य, इस श्लोक के एक शब्द के दो पाठ है, कालेन तथा काव्येन। कालेन का अर्थ है समय की कृपा से तथा काव्येन का अर्थ है शुक्राचार्य की कृपा से। शुक्राचार्य दैत्यों के आध्यात्मिक गुरु हैं, असुरों तथा दैत्यों को दोनों ओर से लाभ था, अतः भगवान ने देवताओं को सलाह दी कि वे तब तक के लिए उनके संधि कर लें जब तक समय उनके अनुकूल न हो जाए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानात् मिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखानितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महाबलान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यात दानव दैत्ययै तावत् संधि विधीयतां कालेन अनुग्रहीतैतै यावत् वह भवात्मनः। जब तक तुम उन्नति नहीं कर रहे, तुम सबको दानव तथा असुरों के साथ संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि संप्रति समय उनके अनुकूल है। ये श्लोक कौन बोल रहे? भगवान कह रहे हैं। किनके प्रति? ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सभी देवताओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि देवता अभी श्रीहीन हो गई बा, तेज उनके तेज से विहीन हो चुके हैं, क्योंकि पहले से आपके प्रसंग सुनकर आ रहे थे किस प्रकार दुर्वासा मुनि एक दिन स्वर्ग में भ्रमण करते करते इंद्र को देखे सामने। इंद्र अपने हाथी के ऊपर, ऐरावत के ऊपर बैठे थे देवताओं के राजा। तो दुर्वासा को देखकर प्रसन्न हुए और अपने गले से एक महाप्रसादी माला निकाल के दे दिए। किनको? तो इंद्र ने क्या किया, अपने हाथी के ऊपर डाल दिए। हाथी के सुंड में डाल ऊपर डाल, तो हाथी क्या समझेगा महाप्रसाद माला का महिमा। वो नीचे गिरा दिया माला को और पैर में उछल दिया। उनके सामने ही हो रहा था। किसके सामने? दुर्वासा को तो सब जानते हैं। तुरंत ही क्रोधित होकर अभिशाप दे दिए इंद्र को। अरे हाथी तो गिराया, वो अभिशाप क्यों इंद्र को मिला? बोलो, हाथी को गिराया और पैर में इसको कुचलने वाला कौन था, तो अभिशाप क्यों इंद्र को मिला? हैं? हाथी को क्या अभिशाप देंगे? हाथी है पशु, उसको उसका बुद्धि इतने है नहीं। लेकिन ये डालने वाला तो यही था ना, क्योंकि उसके अंतकरण को अंदर में क्या चिंतन चल रहा था इंद्र का, दुर्वासा को पता चल गया। तो जोगी है, इनको सब कुछ पता रहा। जैसे अम्बरीश महाराज ने भी पानी पी लिया था तो वो उसको पता लग गया वहां से रहते। तो उसी प्रकार ये जो इंद्र ने अंतकरण में किस भावना लेकर फूल वहां ऐरावत के ऊपर डाल दिया, उनको पता लग गया कि इंद्र ने सोचा कि मेरे बागान में तो इसमें नंदन वन में इतने सारे पारिजात की पुष्प हैं, इतने सारे मूल्यवान पुष्प हैं, मेरे फ्रेश माला होना चाहिए। तो कहीं कहीं कब का माला पता नहीं है मेरे। तो थोड़ा सा घमंड था किसके मन में? इंद्र के मन में। स्वर्ग के राजा होने के कारण कई बार वो ऐसे ऐसे ही मिस्टेक करते रहते हैं। जो मैनेजमेंट में रहेंगे तो कितना मिस्टेक होने का बहुत चांस होता कई बार है। तो बेचारा तो दुर्वासा कहे कि तुम इतनी उद्धत है, तुमको इतनी अहंकार है तुम्हारे ऐश्वर्य में, स्वर्ग के राजा बन गया तो बहुत ऐश्वर्य, इसलिए तुम अभिशाप देता हूँ संपूर्ण ऐश्वर्य से तुम विहीन हो जाओगे। बस हो गया है। आस्ते आस्ते में तेज घट गया इंद्र के सब देवताओं के शरीर का, और जो चमक जो तेज था, बल था, सूर्यता था, ये सब आस्ते आस्ते वो निस्तेज होने लगे। और राक्षसों की सामना करना इनकी इनकी बस में नहीं था। राक्षस लोग ने अपने गुरु कौन शुक्राचार्य की सेवा करके उनकी कृपा आशीर्वाद से वो तेजस्वी बन गए। अभी राक्षस जो तेजस्वी बनते हैं, सबसे में दोनों का लड़ाई चलता है। किसमें? देवता और राक्षस में। एक ही परिवार के सब सदस्य है। कश्यप मुनि के पुत्र हैं। कश्यप मुनि के दो पति हैं, विशेष रूप में तीन पत्नी के नाम है, अदिति के पुत्र सब आदित्य वा देवता कहते हैं इनको। आदित्य आनंद अहम विष्णु, वामन देव ने इनके 12वें गर्भ में आए थे आदित्य देवी के। उसके सुख आदित्य के गर्भ में जन्म लेते हैं देवता है, और जो द्वितीय के गर्भ में जन्म लिए दैत्य हैं, जो दनु के गर्भ में जन्म लिए दानव है। दैत्य और दानव में अच्छा मिलजुल रहता है, तो दोनों मिलके दोनों को मिलाकर राक्षस कहते हैं इनको है। असुर कहते हैं, असुर व राक्षस दोनों। राक्षस और देवता में क्या अंतर है? एक ही पिता है, पिताजी तो कश्यप मुनि। तो दोनों में विशेष अंतर क्या है, राक्षस में और दैत्य में? हैं? जो भगवान के शरण में जाते हैं तो उनको देवता कहते हैं, जो भगवान के शरण में न जाकर
हैं अपने मन मन से अपने बाहुबल पर विश्वास रखने वाले और स्वयं कभी कभी भगवान बनने के लिए कोशिश करने वाले, ये इनको कहते राक्षस है। लेकिन फिर भी ऐसे ही दानव, दानवों के बीच में भी कभी कभी अच्छे व्यक्ति होते हैं। दैत्यानंद प्रहलाद और चाश्मनी, प्रहलाद और बलि महाराज दो महाजन भी राक्षस कुल से हैं। लेकिन इस परिस्थिति में जब देखे कि देवताओं ने अपनी ऐसे विपद के समय आ गए, उनके तेज घट रहा है, अभी क्या करेंगे, सो भागते भागते कहाँ गए देवता लोग ने, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा पास में ब्रह्मा जी फिर क्षीरसागर किनारे इनको लेकर गए। हमेशा ही समस्या, जो भी कोई समस्या आता था देवताओं की, उनका लीडर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी फिर इनको लेकर क्षीरसागर किनारे प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ खड़ा होकर जब स्तुति करने लगे देवताओं, बहुत सुंदर स्तुतियाँ करने लगे, तो भगवान ने समझ गए कि इसीलिए स्तुति कर रहे हैं, इन स्तुति करने का अभिप्राय को समझ गए। तो इसलिए बड़े मेघ गंभीर वाणी में भगवान ने कहा है कि जो कहे थे, तो इन श्लोकों में से उसकी वर्णन आता है कि भगवान ने क्या कहा है कि हे देवताओं, अभी 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 प्रतीक्षा करो, अभी तुम्हारा समय नहीं है, अनुकूल नहीं है तुम्हारे पक्ष में, क्योंकि तुम अपने कर्म ही कर्म में ही ब्राह्मण के द्वारा अभिशाप प्राप्त किए हो। किसके द्वारा? दुर्वासा के द्वारा। तो इसलिए कुछ क्षण तक, कुछ समय तक तो आपको इसका प्रभाव डालेगा, ब्राह्मण के अभिशाप के प्रभाव। इसलिए तुम प्रतीक्षा करो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते कि भगवान यदि चाहते थे तत्क्षणात भी इनके समस्या समाधान कर सकते थे, देवताओं को विशेष शक्ति प्रदान करके इनको फिर तेजस्वी बा फिर इनके बल वीर्य को फिर वापस ला सकते थे। लेकिन भगवान ने क्या अभिप्राय और कुछ था, क्या अभिप्राय था? समुद्र मंथन के थोड़ा लीला करने के लिए, समुद्र लीला, समुद्र मंथन के लीला को थोड़ा आनंद उठाने के लिए भगवान को भी इच्छा हुआ है। क्या करेंगे, वैकुंठ में बैठे 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 थोड़ा बोर हो जाते, कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए सोचे कि चलो कुछ कुछ लड़ा करना पड़ेगा, कुछ दोनों को मित्र तक और सबसे में ये लड़ाई करते रहते, ऐसा ही कुछ कार्य करना पड़ेगा, दोनों जैसे मिलजुल के कार्य करेंगे। चलो भगवान की इच्छा था कि पिछले श्लोक में कहा गया कि भगवान चाहते थे तो समाधान कर सकते थे समस्या को, लेकिन भगवान को ये भी इच्छा था कि यद्यपि देवताओं के स्वामी भगवान देवताओं के कार्यकलाप के स्वयं संपन्न करके करने में समर्थ थे, फिर भी उन्होंने समुद्र मंथन की लड़ा का आनंद उठाना चाहा। कौन? भगवान। अतएव वे इस प्रकार बोले कि भगवान कहा, हे ब्रह्मा शिव अन्य देवताओं, तुम सभी ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं जो कुछ कहूंगा उससे तुम सबका कल्याण होगा। भगवान जो कुछ करते हैं कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए? श्रेय, सबके श्रेय का कल्याण की चिंतन भगवान करते। भगवान जो कुछ करते हैं वो किसी के अमंगल कर ही नहीं सकते। भगवान किसी का अमंगल कर सकते? प्लान करने भी प्लान करेंगे, मैं इस व्यक्ति का अमंगल करूंगा, कर सकते अमंगल? भगवान प्लान करने पर भी, किसी प्रकार के प्रयास करने पर भी किसी का अमंगल नहीं कर नहीं सकते, क्योंकि मंगलमय स्वरूप है। ज्यादा कोई राक्षस लोग उत्पात मचा रहे तो गुस्सा होकर फिर भगवान ने किसको क्या करते, मार डालते हैं। मार डालने से क्या नुकसान होता है? मार डालने भी उसको कम से कम तो साजु जयमुक्ति मिल जाता, तो करोड़ों जन्म से तपस्या करके जो पंथास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायु रथापि मनसो मुनि कुंदवान, जिनको प्राप्त इतनी लाखों वर्ष तक जिनको ध्यान करके ही जिनकी दर्शन नहीं कर पाते जो योगी जन, तो सिद्धि इनको साजुज मुक्ति प्राप्त बहुत आसान से प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान कह के देखो, मैं जो कुछ कहूंगा ये आपके कल्याण होगा, इससे आपके कल्याण होगा, किनको? देवताओं की। तो इससे क्या देवता राक्षसों की अकल्याण होगा? देवताओं की कल्याण होगा, राक्षसों की अकल्याण होगा? भगवान किसी की अकल्याण की चिंतन नहीं करते। समहं सर्वभूतेषु नच प्रिय न दृष्टि न चमय प्रिय, भगवान की कोई शत्रु मित्र नहीं होते हैं, लेकिन जे भजंती तुमान भक्तिया मयि ते तेषु ते अपि अहम् ते चापि अहम्। लेकिन जो लोग विशेष रूप में भगवान के शरणागत होते हैं, उनकी भक्ति भक्ति बा सेवा परायण होते हैं, उनकी भजन करते हैं, भज धातु से भजन शब्द करते हैं सेवा, जो प्रकटिक भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो भगवान कहते हैं वो विशेष रूप में मेरे मेरे होते हैं और मैं भी उनकी होता हूँ। साधव हृदय महन साधुना हृदय तो हम मत अन्य न जानती नहांग तेभ्य मना कपी, जो मेरी शरण में आकर मेरे चरण कमल को आश्रय कर लेता तो फिर वो विशेष रूप में उसको मैं विशेष रूप में देखभाल करता हूँ, वो सदा मेरी हृदय में निवास करता, मैं भी उनकी हृदय में निवास करता हूँ। तो इसी प्रकार इसलिए भगवान ने यदि वो सभी जीवात्मा भगवान के ही नित्य दास है, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर कहते कि केहू माने केहू ना माने, सभीता दास, कोई मानता इस बात को कोई नहीं मानता है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, केहू माने केहू ना माने सभीतार दास है? लेकिन आप जेहू ना माने अपना गुणे सही जाए नाश, जो व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करता कि मैं भगवान के नित्य दास, वो अपना ही गुण में ही उसका नाश होता है, वो स्वयं का कर्मफल को स्वयं भुगतता है, उसमें भगवान की कुछ लेना देना नहीं होता है, अपना गुण से ही जाए नाश, उसके विनाश होता है। इसलिए भगवान ने सलाह दे रहे हैं देवताओं को कि प्रतिज्ञा कर लो कुछ, क्योंकि भगवान को भी कुछ लड़ा करने की इच्छा हुई थी, कि कौन सा लड़ा, समुद्र मंथन की लड़ा, कि आनंद लेना चाहते थे भगवान में, समुद्र मंथन में स्वयं सब कुछ किए हैं, वो पत्थर को भी नहीं पर्वत को कोई ला नहीं पाए, देवता मंदर पर्वत को उठाने की इनका शक्ति नहीं था, सब गिर गए तो मर गए उसमें रास्ता में, पत्थर को जो उठा रहे थे वो पर्वत को मंदर पर्वत को उसका नीचे सब आ गए कि राक्षस देवता सब, तो भगवान फिर गए हैं, भगवान ने इनको दिखाना चाहते देखो मेरे शक्ति के बिना तुम भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो इसलिए स्वयं फिर बहुत आसान से उठा के इसको गरुड़ का पर रख दिए, फिर लेके आ गए, फिर पर्वत को जो रखे नीचे कुछ था नहीं तो वह ढील लला का पर्वत, फिर उसको मंथन करने में संभव नहीं हुआ उसकी सहायता, तो भगवान ने स्वयं फिर नीचे बैठ गए, किस क्या बनकर कूर्म अवतार कूर्म रूप धारण करके नीचे बैठे, फिर उसकी ऊपर रहा पर्वत, जो ये मंथन करते तो पर्वत घूम रहा था वो रड की तरफ पर्वत, तो भगवान को अच्छा खुजली खुजली हो रहा था पीठ में, कूर्म के रूप में बैठे थे, विशाल कूर्म, वो इतने छोटा कूर्म नहीं है जिनके ऊपर इतनी बड़े विशाल पर्वत रुका था पीठ पर, खैर देखिए कि पूरा मैंने क्या स्थिर भाव से वो नहीं रहता, फिर हिलता रहता, फिर ऊपर बैठ गए, नीचे भी बैठ गए, फिर ऊपर भी हैं, हजार भाव वाले हैं और अजीत रूप में फिर ऊपर बैठे, उसमें कहीं आनंद ले रहे थे, भगवान ने अपनी लीलाओं को आस्वादन करना चाहते, तो इसलिए तुमने ये प्लान बनाया और देवताओं को कह रहे कि अभी तुम्हारा समय नहीं है, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक तुम्हारे अनुकूल समय नहीं आया, आप लोग अभी प्रतिकूल स्थिति में हो क्योंकि किसको किसके चरण में अपराध किए हो, दुर्वासा के चरण में ब्राह्मण को अधिक किए हो, ब्राह्मण के अभिशाप के कारण अभी आप लोग दैत्यों के साथ में युद्ध नहीं कर पाओगे, इसलिए दानव दैत्य ही ताब तब तक प्रतीक्षा करो, दैत्यों के साथ में संधि कर लो उनके साथ संधि कर लो, क्योंकि दैत्य लोक ने विशेष रूप में काल की प्रभाव समय की प्रभाव के द्वारा बा ये श्लोक कई जगह पर कई टीका में भागवत की टीका में यहाँ पर काले ने शब्द लिखा गया श्लोक में और किसी में काव्य ने भी लिखा गया, इसलिए प्रभुपाद दोनों का अर्थ बता रहे, कालयन का अर्थ अनुकूल समय द्वारा, काव्यन अर्थ शुक्राचार्य के द्वारा, शुक्राचार्य के द्वारा विशेष कृपा पात्र है कौन दानव दैत्य लोग ने भी शुक्राचार्य की सेवा करके ब्राह्मण की सेवा करके उनके द्वारा विशेष वरदान व शक्ति प्राप्त करके ही बलियान है तेजस्वी है, अभी तुम लोग उनके साथ युद्ध नहीं कर पाओगे जब कोई भी फिर वही राक्षस लोग जब फिर अपराध करते हैं किसकी शुक्राचार्य के चरण में फिर वो तेज से विहीन हो जाते हैं, तो इसी प्रकार देवता लोग भी कभी कभी अभी दुर्वासा के चरण में अपराध किए कभी कभी बृहस्पति के चरण में अपराध कर देते हैं, ऐसा जो अत्यधिक होने से दूसरे दृष्टांत है ना उठ के चला, मैंने बृहस्पति आए इंद्र की सभा में, इंद्र ने बैठकर क्या देख रहा था, डेंस देख रहा था सब, उसी में मोहित था, इतने अप्सरा नृत्य करते, बड़ा अपने कुर्सी में बैठा हुआ था आनंद से, लेकिन गुरु आए, गुरु जी आ गए, उसको ध्यान नहीं, प्रणाम नहीं किया, उठा नहीं। बृहस्पति तो ऐसे कुछ अभिशाप भी नहीं दिए इसकी तरफ, लेकिन वो चले गए, घूम के छूट के चले गए, समझ गए इसका मन में अहंकार आ गया है, तो उसी से इसका सारे श्री हानि होने लगा। इसे क्या ऐश्वर्य हानि होने लगा है। कभी कभी अत्यधिक ऐश्वर्य होने से हमारे मन में से अहंकार घमंड आ जाते हैं है? तो इसलिए भगवान ने कह रहे कि देखो अभी तुमने किसी भी कारण हो वा कालन हो, समय के द्वारा या शुक्राचार्य के द्वारा विशेष रूप में है, अभी उन्हीं के अनुकूल है। किसके अनुकूल? दैत्यों की। इसलिए उन्होंने अनुग्रहित हुए हैं विशेष रूप में शुक्राचार्य के द्वारा, अनुग्रहित ही तई, तो अनुग्रहित होकर अभी जो बलशाली है आप लोग उनके साथ में युद्ध करना संभव नहीं है, इसलिए तब तक प्रतीक्षा करो जब तक आपके भव अर्थात सौभाग्य, जब तक आपका सौभाग्य का दिन नहीं आया तब तक प्रतीक्षा करो। भगवान ने भी कभी कभी ऐसे राजनीति सिखाते हैं, सिखाते भगवान राजनीति, महाभारत युद्ध में बहुत राजनीति की है कि नहीं, क्योंकि उनके पक्ष में भी सब कपटी लोग थे, पांच पांडव लोग ने भक्त लोग थे, महान भक्त थे, और युधिष्ठिर महाराज था बहुत सरल हृदय में थे, वैष्णव थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु थे, वो तो किसी शत्रु मानते नहीं थे, तो इसलिए भगवान ने बीच में आकर सब कूटनीति किए हैं। कितना कूटनीति, यदि भगवान ने उनको सहायता नहीं करते पांडवों को है, तो शकुनीति का, शकुनी का जैसे कूटनीति था, दुर्योधन उनके साथ मिला हुआ था, पांडवों को समाप्त कर देते हैं, कि युधिष्ठिर महाराज को इस में फंसते नहीं थे, वो तो श्री भगवान के ऊपर निर्भर करते थे है? भगवान ने सर कहा ना, जो भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ले लिया, दुर्योधन ने बहुत गाली देता था किनको, भीष्मदेव को, भीष्मदेव महाभारत युद्ध के पहला सेनापति थे, प्रथम सेनापति थे कौरव पक्ष के, लेकिन वो जान उनके स्नेह था पांडवों के प्रति, पांडवों को मारना नहीं चाहते थे, कौन भीष्मदेव, स्नेह थे, पहले से आशीर्वाद भी दिए थे, सेनापति रहे विपक्ष में लेकिन आशीर्वाद दिए पांडवों को, क्या विजयी भव वो लड़ाई कर रहे इसे विपक्ष, लेकिन आशीर्वाद दे रहे पांडवों को विजयी भव आप लोग विजयी, और दुर्योधन को नहीं दिया आशीर्वाद, लेकिन उनका स्नेह था, बचपन में पांडवों को उन्होंने अपने हाथ से ही लालन पालन किए थे, और जानते थे कि ये लोग धर्म के पक्ष में हैं, और उनकी जय होगा क्योंकि कृष्ण उनके पक्ष में बैठे हैं, विष्णुदेव पता है बात, लेकिन गुस्सा होकर तो दुर्योधन बहुत कहा कि आप बेईमान हो, खाते हो हमारा, चिंता करते हो पांडवों का है, कभी कभी कहते ना खाते कौरवों का और चिंता करते हो पांडवों की, बहुत गाली दिए, आप युद्ध नहीं कर रहे हो, रणभूमि में होकर क्षत्रिय नीति को पालन नहीं कर रहे हो, क्षत्रिय को युद्धभूमि में कुछ नहीं देखना है, विपक्षी के साथ लड़ना, आपका सामर्थ्य कौन नहीं जानता, आपको युद्ध में पराजय करने के तीनों लोक में कोई नहीं है, स्वयं भगवान के शक्ति में से बता कौन, परशुराम भी आपसे हार माने थे, आप युद्ध नहीं कर रहे, यही तो मेरे यही है कमी है, तो भीष्मदेव ने बड़े क्षत्रिय को यदि ऐसे कोई डांटेगा तो वो गर्म हो गए, ठीक है आज मैंने शपथ ले लिया, क्या करूंगा, काल सूर्यास्त के पहले ये धरणी को अपांडवा कर दूंगा, सारे पांडवों को, सब पांडवों को समाप्त कर दूंगा, बड़े दुखी हो, पर कोई ऐसा ही क्षत्रिय को ऐसे बुरे बुरे शब्द कह के कोई कहेगा तो धैर्य धारण नहीं कर पाते, तुरंत ही उनकी स्वभाव है क्रोधित हो जाते, तो क्या करेंगे, भगवान ने कहे कि ठीक है, पांडव लोग तो भगवान के ऊपर आश्रित थे, सब लोग सोचे कि तो भीष्म प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा कभी झूठा नहीं हो सकता, भीष्म प्रतिज्ञा किए तो फिर वो कई टालेंगे नहीं, वो किसके साथ में टक्कर देने के लिए तैयार थे, कहे थे मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, भीष्म प्रतिज्ञा पालन किए, परशुराम को अपने जाता युद्ध गुरु को भी माने नहीं, वचन दिया हूं पिता को पालन करूंगा, यदि आप एक बार निश्चित कर लिया कि निष्ठिक ब्रह्मचारी रहूंगा, फिर उसको बदलना नहीं चाहिए। प्रतिज्ञा भीष्मदेव की कैसे देखो, महाजन है, महाजन जन मत्स्य पंथ है, प्रतिज्ञा लेकिन बस। लेकिन भगवान ने कहे क्या करे, सब लोग पांडव लोग ने सब तो भगवान के ऊपर आश्रित सब बैठे, भीष्मदेव जब प्रतिज्ञा ले ली है क्या होगा। पांडव ने फिर अर्जुन को बोलने से भगवान ने अर्जुन को बुलाकर कहे, अर्जुन तुमको याद है जब चित्ररथ गंधर्व ये सबको बांध के ले जा रहा था, किनको, अर्जुन आदि सारे पांडव, कर्ण भी उसमें शामिल था, सभी कोई देवताओं के साथ युद्ध करने के पास समर्थ नहीं था, है तो दिव्यास्त्र इनके पास में इतना नहीं था कि वो गंधर्व के साथ युद्ध कर सके, सब इनको बांध के ले जा रहे क्योंकि वो चित्रसेन गंधर्व की बहन के साथ ये लोग दुर्व्यवहार कर रहे थे दुर्योधन में आदि, बांध के सबको लेके जा रहे थे। तो उस समय तो भीम बड़ा खुश हो रहा था, भीम बड़ा बहुत अच्छा हुआ मुझे 20 वर्डू खिलाए थे ये लोग, अभी अच्छा हुआ तो बड़ा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज फिर कहे कि अर्जुन जाओ, हमारा भाई है, जो भी हमारा भाई है, हमारी कुल वंश है, हमारी पांडव हमारी भाई, जाओ उनको छुड़ा के लाओ। क्या करे, अर्जुन गया था फिर पिता युधिष्ठिर महाराज कहने पर जाकर जो छुड़ा, वो चित्र गोसन कंधर बोला अरे क्या करे, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं, तुम क्यों आया अर्जुन, हम उसको लेते इसका इनका काम कर देंगे बस खत्म हो, तुम क्यों बीच में आ गए, तुम्हारी हित के लिए कर रहे हैं, हम जानते हैं आप तुम लोग कितने धर्मात्मा हो, तो तुम्हारी हित के लिए मैं ले जा रहा हूं, इसको सब से वही समाप्त कर देंगे, वो दोबारा आएंगे नहीं तुम्हारे पास इधर। लेकिन अर्जुन कहे कि जो भी है, मैं तो बड़ा भाई का आदेश फॉलो करना है, किसका, युधिष्ठिर महाराज, हमारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। गंधर्व को, गंधर्व जानते थे कि अर्जुन के साथ युद्ध करना संभव नहीं है, ऐसे तो एक तो उनके राजा के पुत्र है, इसका इंद्र का भी पुत्र है, इंद्र भी गुस्सा हो जाएगा, अरे मेरे लड़का के साथ लड़ाई कर रहे तुम, वो भी गुस्सा हो जाएगा, क्या करेंगे, इंद्र का ही पुत्र है और सभी दिव्यास्त्र भी इसके पास है, क्या करेंगे इसके बेकार में, चलो ठीक है हम छोड़ देते इसको, तो लेके जाते हैं जो करना है, तो क्या करें। फिर इंद्र ने तभी दुर्योधन में बड़ा खुश हो गया था, किसके प्रति, कहा था कि एक वरदान देना चाहता हूं, जो चाहिए मांगो, हैं? अर्जुन ने वरदान नहीं मांगा, वो आपस में बोला कि बात नहीं, क्योंकि वो जो कुछ करते थे किसको पूछ के, भगवान को, ऐसा नहीं वरदान किया, जब मांग लेता था हस्तिनापुर की राजधानी सीट हमको दे दो, मांगा नहीं, वापस आया फिर भगवान को जो बोला सारा स्थिति, भगवान कहे कि ठीक है समय आने पर इसका उपयोग होगा, तो आज उपयोग हो गया, भगवान याद करते, पांडव लोगों को सब याद नहीं था, अर्जुन को याद नहीं था, बोले देखो तुमको याद है क्या कहा था दुर्योधन, जो चित्र से गंधर्व को लेके जा रहा था, एक वरदान देना चाहता तुम जो उनको छुड़ा के लेके आ रहा था, अभी समय जाओ उसको वरदान मांगो, क्या वरदान, हस्तिनापुर के सिंहासन दे दो, युद्ध करने का जरूरत नहीं, हस्तिनापुर सिंहासन हमको वापस कर दो, मांग सकता है वरदान, मांग सकता है, मिल जाता हस्तिनापुर सिंहासन, कोई युद्ध बुद्धि कुछ नहीं होता, बस आराम से क्या करेगा, दुर्योधन जो एक बार वचन दिया तो फिर वचन नहीं टालेंगे, क्षत्रियों के स्वभाव है, चाहे दुर्योधन कितना दुर्बुद्धि वाले हो, भीम जब जाकर ललकराया युद्ध के लिए और चुपके था, कहाँ मानसरोवर में लक्ष्मी के गोद में बैठा था, संभाला आपको नहीं, क्षत्रिय को भी संभालेंगे नहीं, अपने स्वभाव नहीं छोड़ सकते, लेकिन भगवान ने चाहते थे ये सारे, जैसे यहां पर भगवान ने चाहते थे समुद्र मंथन की लागू करने के लिए, तो भगवान भी थोड़ा युद्ध देखने के लिए आए थे, बैठे थे उनको युद्ध करना और सब समाप्त करना है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, तो इसलिए ये कैसा होता, यदि अर्जुन पास मांग लेता राज्य दे दो, गोबर दे दो, हस्तिनापुर सिंहासन को दे दो, तो भगवान ये इसको नहीं ये बताए कि ये मांग लेना, दिमाग लेता था अर्जुन, बस आ जाता युद्ध समाप्त, वो नहीं मांगा, क्या मांगा, वहां कहेगी इसका मुकुट मांग के ले आओ, किसका, दुर्योधन के पास जाओ और उसको बोलो कि तुम्हारे राज मुकुट आज रात के लिए, परमानेंट नहीं, आज रात के लिए केवल दे दो। तो पांडव ने अर्जुन को जानता था कि भगवान सदा हमारा हिताकांक्षी है, हमको जितने बोले इतने ही करना, हमारे इंटेलिजेंस खटाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा, भगवान के निर्देशन के आधार पर जो चलता है, गुरु कृष्ण के निर्देशन पर, उसको कोई विपद नहीं है। वो पूछा भी नहीं कहीं एक रात के लिए क्यों बन रहे, पूरा पूरा लाइफ के लिए मांग लेते हस्तिनापुर के सिंहासन और राजमुकुट, एक रात के लिए क्यों बन रहे, वो पूछा भी नहीं गया। जाकर वो दुर्योधन की सभा में पहुंचा, युद्ध चल रहा था, लेकिन प्राचीन काल के युद्ध नीति के अनुसार सूर्यास्त के बाद फिर कोई किसी को मारते नहीं थे, शत्रु भी दूसरे मित्र का कैंप में भी जाता था, वो भी इनके कैंप में आते थे, इसलिए वो गया दुर्योधन के कैंप में। उसको देखकर सब लोग आश्चर्य हुए कि कैसे आ गया है, सपने वाला क्या मंत्रणा चल रहा है। तो फिर उन्होंने कहे कि दुर्योधन को याद दिलाए कि तुमने ऐसे वचन दिया था, जब इस तरह से गंधर्व को बांध के तुमको ले जा रहा था, तुमको मैं छोड़ा के लाया था, तुमने कहा था कि वरदान देना, मुझे वर देना चाहता, तो अभी अभी मुझे उसे वरदान चाहिए। सब चिंतित तो हो गए, बोला गया युद्ध तो खत्म हो गया है। अभी अर्जुन बोलेगा दुर्योधन हस्तिनापुर के सिंहासन हमको दे दो, किसको, पांडव। सब विषण हो गए थे, शकुन भी पड़ा, मुख नीचे करी बढ़िया, क्या करेंगे अभी। तो अर्जुन कहे ठीक है, संकल्प कर लिया दुर्योधन, जो चाहिए मांगो, मानी दुर्योधन है ठीक है। कहे क्या दे दो, तुम्हारे जो राज मुकुट, जो हस्तिनापुर के सिंहासन जो मुकुट है, राज मुकुट विश्व के सम्राट जो मुकुट है, वो मुझे आज दे दो एक रात के लिए, काल ला के दे दूंगा। हैं, सबको तो बड़ा हंसने लगा, बोला कि लग रहा है कि पांच भाई तो मरने वाले हैं सारे सब कुछ, इसलिए आज रात भर पांच भाई मुकुट को पहन पहन के थोड़ा अपने अपने इच्छा पूर्ण करें, पांच भाई थोड़ा एक एक करके पहनते रहे हस्तिनापुर के मुकुट। तो ऐसा सोचे कुछ को समझ में नहीं आई कि मुकुट मांग रहा है एक रात के लिए। भीष्म देव ने पांच पांडवों को वध करने का बाण बनाकर साथ में रखे थे दिव्यास्त्र, जिसके माध्यम से पांच पांडवों को एक एक तीर मार के ही समाप्त कर देंगे। तो पांचों बल सतर्क से रखे थे पांच पांडवों के मरणास्त्र के साथ में, पता था किसी अस्त्र में कौन मरेगा है। तो इसीलिए मुकुट पहन लिए दुर्योधन, और रात को भगवान कहे जाओ, रात को एक बज गया, अभी जाओ, अभी जाके ठक ठक करो। भीष्मदेव के कैंप में घर चला गया मुकुट पहन के, देख भीष्मदेव जग के राजमुकुट भगवान तो सोए हुए थे, बड़े चिंतित थे, बड़े दुखी थे, आंख से अश्रु बह रहा था कि पांडव को विनाश करने जा रहे हैं। प्रणाम किए दुर्योधन ने, दुर्योधन के मुकुट पहनकर अर्जुन प्रणाम किया है, और भगवान की कृपा से उसका टोन भी कैसे हो गया था, दुर्योधन से बोल रहा था, सोच रहे। अब वो तो आग बंद कर देखने की उनकी इच्छा नहीं था, दुर्योधन को सकल देखना नहीं चाहते थे कौन भीष्मदेव, इसलिए आग बंद करके बात करते थे, खाली देख ली कि राजमुकुट है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के राजमुकुट, बोले कि दुर्योधन ही है। तो कहे कि पितामह आप जो पांच पांडवों के मरणास्त्र जो बना के रखे हो वो मुझे दे दो, मुझे विश्वास नहीं कि आप मारोगे उनमें, मुझे दे दो, जो मैं एक एक तीर बढ़ाऊंगा और आप एक एक को मारना, मुझे दे दोगे। पांच मरणास्त्र को लेकर अर्जुन आके दे दिया भगवान पर, होगा भगवान भेजो तो बस दे दिया, पांच मनोरास्ता देकर फिर मुकुट बुला लेके दे दो उसको, बस वापस करते मुकुट लेके किसको है। तो भगवान ऐसे ही जो लीला करते, कुछ लीला करके उनका आनंद लेना पड़ता, किनको, भगवान को। ये समुद्र मंथन के भी देवताओं को ऐसे ही वो बड़ा सारी बना सकते थे, लेकिन वो नौकर ही कहे कि नहीं थोड़ा समुद्र मंथन की लीला आस्वादन करना है। महाभारत युद्ध में हम देखेंगे ऐसे ही सारे लीला को आस्वाद, कितनी प्रकार की लीला भगवान ने आस्वादन किया, और आपने महामता को समझाया कि सारे जो मैंने योद्धा मिलकर भी, इतनी बड़े बड़े योद्धा भीष्म द्रोण कर्ण आदि शाल्लो आदि सारे होकर भी एक साथ में, क्योंकि भगवान उनके पक्ष में नहीं थे इसलिए उनकी विजय नहीं होगा। इसी प्रकार जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवान के अतिर्लिंग। उसी प्रकार यहां भी देवताओं के पक्ष में भगवान हमेशा रहते इसलिए उनकी विजय होता है, लेकिन फिर भी भगवान चाहते तो नहीं बलशाली बना सकते थे, ये दुर्वासा का अभिशाप को खंडन कर सकते थे अमरीश महाराज के केस में जैसे, और राक्षस को उत्पन्न किया, लेकिन भगवान ने एक सेकंड में सुदर्शन भेज समाप्त कर दिया उसमें। भगवान चाहते तो कुछ भी कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको भी सुखदेव गोस्वामी कहते कि इनको भी थोड़ा इच्छा था क्या है, समुद्र मंथन की लीला को आस्वादन करना है, बड़ा बैठ के देखना भगवान को, और उन्हीं के भक्त नारद जी को इसीलिए वही स्वभाव है। क्या करते हो, झगड़ा लड़े के थोड़ा मजा देखना चाहते हैं नारद मुनि, लेकिन उनको तो दोष नहीं लगता। तो महाभारत वैष्णव वो सभी में भगवान के लड़ा देगा, वो सबके मित्र हो जाते हैं। कंस का भी मित्र, हिरण्यकशिप का भी मित्र, हिरण्यकशिप भी सोचा क्योंकि महान मित्र बन गया नारद मुनि के, क्योंकि नारद मुनि ने उसकी उसकी पत्नी को गयाधु को अपने संरक्षण में रखे थे जो तपस्या करने गया था। भगवान नारद मुनि कितना बड़ा मित्र है मेरे, लेकिन वही फिर पीछे से सिखा रहे थे किसको, उसके लड़का को, है प्रहलाद को सारे सिखाए कैसे भक्ति करना भगवान को, है उसको पता नहीं धीरे कुछ इसको कौन भक्ति सिखाया, अरे तुम्हारी मित्र ही उसको भक्ति सिखाया, कौन नारद मुनि जी उसको बड़ा मित्र समझा तुम कि मेरे पत्नी को संरक्षण किया था। इसलिए कभी कभी भगवान ने भक्तों को भी ऐसे कूटनीति करना पड़ता है। सनातन गोस्वामी जेल में थे, जेल में इसको बांध दिया हुसैन शाह, जो राजी नहीं हुए मंत्री कार्य और मंत्री का प्रधानमंत्री के कार्य को संभालने के लिए, हुसैन शाह क्या बहुत समझाया, नहीं माने तो अरेस्ट करके डाल दिया जेल में। तो जेल में थे तो फिर रूप गोस्वामी ने पत्र भेज दिया कि मैं रखा हूँ वो सेठ जी के पास में 10,000 स्वर्ण मुद्रा, तो उसको घोष देकर जेलर को कैसे निकाला वहां से। तो फिर समय को प्रतीक्षा करो, वहां पर रूप गोस्वामी पता लगे कि अभी कहाँ गए, माने जो कोसलों के राजा, वो कोसल वंशी सूर्यवंशी राजा चंद्रवंशी कितने राजा गए और आए, काल के प्रभाव में सब कुछ बदल हो जाता है, अदल बदल हो जाता है, इसलिए आप काल को थोड़ा प्रतीक्षा कर, समय आने पर सुजोग देखकर जेल से बाहर निकालो, है इस पर भगवान ने इनको कहते कि समय की प्रतीक्षा करो, थोड़ा उनकी अनुकूल है। तो रूप सनातन को समय क्या किए, जो जेल का सुपरिंटेंडेंट था इसको पैसा दिखाए, पहले 5,000 स्वर्ण मुद्रा दिखाए, पहले अभी छोड़ दो मुझे बाहर निकलने तो, हैं क्योंकि जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन में भाग लूंगा यहाँ से निकाल के। 5,000 स्वर्ण मुद्रा दिखाए, वो क्या बोला, राजी नहीं, बोला नहीं हुसैन शाह मुझे सोड़ी में चढ़ा देगा। फिर उसके सामने 7,000 स्वर्ण मुद्रा फिर रखे और 2,000 एक्स्ट्रा दिए, बोले देखो ले लो इसको और मुझे छोड़ दो, और मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा, कहाँ, ये बंगाल में नहीं रहने वाला, इंडिया में भारत में भी कहीं नहीं रहूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं फकीर बन के ही मक्का मदीना चला जाऊंगा, क्योंकि मुसलमान था तो पहले मक्का में मक्का मदीना जाऊंगा तीर्थ करने, मक्का से मक्का मदीना चले जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, इसमें तुम्हारा कुछ हानि होने वाला नहीं, तुम बोल रहा है कि जेल से निकाला मैं बहुत इसका तबीयत खराब हो गया था, ऐसे थोड़ा सा बाहर आया कहीं अपने का कार्य कुछ मल त्याग करने के बाद किसी कारण से बाहर थोड़ा सा बहुत अस्वस्थ हो गया था मैं, थोड़ा देखिए बाहर में घूमते घूमते बाहर में नदी के किनारे फिर क्या कर दिया, गंगा में जंपिंग कर दिया, बस बह गया गंगा के स्रोत में, ऐसा बोलते ना बुद्धि बिचारे दे रहे कौन समापन गुस्सा में जलो। देखिये तब भी वो थोड़ा द्विधा में है, कहे कि देखो हैं? तुम जानते हो मैं कौन था, हुसैन शाह की राइट हैंड, पूरा बंग बिहार उड़ीसा के मुख्य प्रधानमंत्री था, उस समय तुम्हारा स्थिति क्या था, और अभी भी मैं इसीलिए मुझे जेल में रखा है क्योंकि मैंने मंत्री पद को स्वीकार नहीं, वो मुझे मना कर दिया कि मंत्री पद में नहीं रहूंगा, और तुम अकाल हुसैन शाह वापस आ जाएगा फिर मैं राजी हो जाऊंगा, ठीक है मुझे प्रधानमंत्री की सेवा करने के लिए मैं तैयार हूं, तो तुम्हारा हालत क्या होगा, हैं समझ रहे, इसलिए भक्तों लेकिन पूरा एकदम सिंपल होते हैं, समय देखा समय के आधार पर भी भगवान की नीति भी ग्रहण करते हैं, तो इसलिए तब डर गया, बोला सही बात है अभी हुसैन से वापस आ जाएंगे फिर सनातन को सभी राजी हो जाएंगे, हैं साकर मल्लिक राजी हो जाएंगे फिर प्रधानमंत्री के पद को निभाने के लिए, फिर तो फिर प्रधानमंत्री बन जाएगा तो मुझे क्या करेगा, छुट्टी कर देगा है जेलर से, तो फिर राजी हो गए। कभी कभी भक्त ऐसा ही कूटनीति को उपयोग करते हैं, लेकिन इसके मतलब नहीं कि आप सब समय वैसे करोगे, कृष्ण की सेवा में उन्होंने किसी ने कूटनीति यूज किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना था, अपने जीवन को संपूर्ण रूप में कृष्ण की सेवा में उपयोग करना था। हमारा अपना हम जो कभी कुटुति करते थे अपने इंद्र तृप्ति के लिए, है महाभागवत वैष्णव ऐसे नहीं करते। रघुनाथ दास ने इनको अरेस्ट करके ले गया, कौन वो मुसलमान जो था पहले, पहले का जमींदार था उस सत्यग्राम के, तो उससे ज्यादा टैक्स देने के लिए कहकर ये लोग ने उसका सेवा ले लिया था। कौन जगन इनके जो पिताजी थे गोवर्धन, गोवर्धन मजुमदार, हिरण्य मजुमदार। तो इसलिए ये देख रहे कि ये 12 लाख दे रहा है टैक्स, लेकिन ये 20 लाख कमा रहा है, ये 20 लाख टैक्स अदाय कर रहे हैं लेकिन 12 लाख दे रहे किसको, गवर्नमेंट को, और ये अपना इतना फायदा उठा रहे। तो ये जाके कंप्लेन किया है? वो मुसलमान जी कंप्लेन किया, तो उन्होंने कहा ठीक है उनको तुम पकड़ के इसको हम प्रमाण करा दो कि इतना है। तो वो फिर आदेश लेकर उनको बंदी बना ले भागा, तो ये दोनों भाग गए घर से, उनको अरेस्ट करने के लिए गया था, दोनों भाग गए। कौन? हिरण्य और गोवर्धन। तो रघुनाथ दास को अरेस्ट करके ले आए, ला कर रखा, दलित डांसर था, ए कहाँ है तुम्हारे पिताजी और ताऊ कहाँ है, पकड़ लाओ इनको नहीं तो तुमको पिटाई होगा, चाबक उतार रहा था। लेकिन फिर डर जाता था, अरे रघुनाथ को मुख को जो देखता था रघुनाथ दास पूरे शांत है, प्रहलाद की तरह वो शांत मस्त थे, भयभीत नहीं थे। तो बात में बोला कहाँ है उड़ा, तो फिर रघुनाथ दास ने बुद्धि सोचे, कह कि देखो आप मेरे जो दोनों पिताजी और ताऊ और आप तो तीनों भाई जैसे हो, कभी कभी भाई भाई में झगड़ा होता है, आज तुम्हारा झगड़ा है काल फिर तीनों मिल जाओगे, एक बेंच में बैठकर एक आसन में बैठकर बातचीत करोगे, मुझे पता है बात। और मैं तो जैसे ही मेरे पिताजी का लड़का है ऐसा ही आपका भी लड़का हूं। रघुनाथ कहे जैसा मेरे पिताजी हिरण्य ने सॉरी गोवर्धन के मैं पुत्र हूं और हिरण्य की भातीजा हूं, इस प्रकार मैं आपका भी लड़का हूं, मैं केवल मेरे पिता की लड़का नहीं मैं आपका भी लड़का हूं। किसको कहे? रघुनाथ जोशी मधुर भाषण कहे कि मैं आपका भी लड़का हूं, तो उसके आंख से अश्रु बहने लगा है, मुसलमान के उसके दाढ़ी भीग कर नीचे टपकने लगा है। तो उन्होंने रोने लगा, तुरंत ही खोल दिया इनको, मुक्त कर दिया किनको, रघुनाथ को छोड़ दिया। तो रघुनाथ को रघुनाथ दास को से फिर आ गए, यानी कि वो प्रयोजन आचार्य इतनी महान भक्त हैं, तो इसलिए कभी कभी स्थिति को देखकर हमको भी ऐसा ही कृष्ण भावना को प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी ऐसा डीलिंग करना पड़ता है। लेकिन वो हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। रघुनाथ दास आकर फिर पिताजी ताऊ को मिलाकर फिर मिला दिए, उनसे कॉम्प्रोमाइज करा दी, ठीक है कुछ पैसा उसको दे दिए, फिर शांत हो गया बस। तो कभी कभी हम स्थिति देखकर विशेष रूप में जो मैनेजमेंट में रहते हैं कभी कभी ऐसे ही करना पड़ता है। इसलिए कहते कि विश्वास नहीं वो कर्तव्य स्त्रीसु राज कुलेषु च, किसी स्त्री को और किसको, राज कुलेषु राज का राजवंश में जो आते हैं जो शासन करने वाले जो शासन गद्दी में बैठकर शासन कर रहे हैं उनको विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्त्रियों को किसलिए विश्वास नहीं करना, इसलिए विश्वास नहीं करना क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का अभिशाप है, युधिष्ठिर महाराज ने अभिशाप दिया स्त्री जाति को, किसके लिए, महारानी कुंती ने विवाह के पहले इसको पुत्र मन के एक पुत्र उनके संतान जन्म हुआ था सूर्य से, कौन कर्ण, इसको छुपा रखे पूरा जन्म छुपा के रखे किसको नहीं बोले थे। जब कर्ण की वध हो गया है अर्जुन के हाथ से कर्ण का वध हुआ तभी कुंती महारानी युद्ध क्षेत्र में भाग भागी गई और वो सबको आलिंगन करके रोने लगी, किसको कर्ण को। तो बोले क्या हो गया तुझे, हाँ सब युधिष्ठिर महाराज आश्चर्यचकित हो गए, ये हमारा शत्रु है इसको मार डालो, तो ये महामारक मिल जाएगी इसको रोक उसको पकड़ के रो रहे हैं, पूछे क्या, कहे ये तुम्हारा शत्रु नहीं है मेरा पुत्र है, मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। भीष्म देव सब जानते थे रहस्य, भगवान जानते थे, भगवान पर बताए है तू इतनी बड़ी बात हमारे बड़ा भाई को हमसे ही करवा दिया, तू जानता नहीं क्यों छुपा के रखा है इतने दिन से, हमको बताया नहीं क्यों, हस्तिनापुर सिंहासन तो मैं उसी को देता था, किसको कर्ण को, हमारा बड़ा भाई है, है? किस सभी पुत्र ऐसे ही थे, कर्ण तो कर्ण सूर्यदेव से कर्ण, धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन, और पवन देव से भी, नकुल सहदेव अश्विन कुमार से, तो सब पता था ये सब थे ऐसे ही, तो कोई हमको बताया नहीं क्यों। तो भीष्म ने इतने डिस्टर्ब हो गए, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, बहुत दुखी हो गए, क्योंकि आज से मैं धर्म को साक्षी रखकर है स्वयं धर्मराज के पुत्र थे, ये अभिशाप देता हूं संपूर्ण स्त्री जाति को, कभी भी कोई बात को छुपा के नहीं रख सकते, हैं कहीं ना कहीं बोल देंगे। आप इनको बताओ कितने भी सेक्रेट बात कहो के देखो छुपा के रखना, किसको नहीं बोलना, वो फिर किसी ना किसी फिर कहीं कहीं गया जाता है उसको बोल देगा, लेकिन बोलेगा दूसरे को नहीं बोलना है, ये मन में मुझे मना है बोलने के लिए, किसी को बोलने के लिए मना किया गया था, इसलिए उसके तुमको केवल अकेला बताती हूँ मैं, दूसरे को नहीं बताऊंगा। ये स्वभाव, ये युधिष्ठिर महाराज के अभिशाप है। और जो राजनीति कूटनीति करने वाले, जो जो शासन करने वाले हैं शासक, तो उनको ऐसे ही करना पड़ता कभी कभी, इसलिए विश्वास करना बड़ा। देखो वो इतना मित्र थे दोनों, कौन द्रोणाचार्य जी और द्रौपद, जानता था द्रौपद, जानते थे किसको, द्रोणाचार्य जी, लेकिन वो मिलने के लिए आए तो गरीब थे ब्राह्मण थे, ये राजा के सिंहासन में बैठे तो मिलने आए मेरे मित्र, लेकिन वो स्वीकार किया नहीं, नहीं जानता। भक्त हुए बिना कभी कभी ऐसे व्यवहार में त्रुटि आता है, क्योंकि फिर भी वो भक्त थे एक प्रकार के, द्रोण जो कौन द्रौपद, फिर भी स्वीकार नहीं किया, इसलिए इसलिए फिर वो जाके और जो पन्न और ने दुर्योधन ने उनको आश्रय दे दिया, किनको, द्रोणाचार्य जी को, सर्व समस्या। इसलिए लेकिन ऐसा ही कभी कभी देखा जाता, भगवान ने इसे कुटनीति कर रहे हैं, स्वयं सिखा रहे हैं, अभी समय को प्रतीक्षा करो, अगला श्लोक कहेगा है कौन सा नीति, सर्प मुसी का नीति है, एक पेटारी के अंदर कौन रह गए, सांप और चूहा, सांप चाह तुरंत खा सकता, लेकिन सांप बुद्धि खर्चा किया थोड़ा, बोला नहीं तुरंत खा देने से तो क्या होगा, इसे निकालना पड़ेगा ना, खा तो लूंगा इसे निकालूंगा कैसे, इसलिए सर्प ने बुद्धि दिया किसको, चूहा को, इसमें पोल बना, तुम तो आता है काटना, काट काट के इसको पोल बना दो, दोनों निकल जाएंगे, होल निकल बना दिया तो बन गया तो क्या हुआ, हैं सांप तुरंत ही खा लिया किसको, चूहा को, और निकल गए। प्रभुपाद ने एक मणि वाक पे आप वीडियो में देखे होंगे, सब चलते हुए साथ में सब शिष्य लोग, ससुर महाराज के सब ससुर महाराज सब निर्भक जा रहे हैं, प्रभुपाद की बात कह रहे हैं, साधु कैसे क्या करता है, साधु घर नहीं बनाता है, साधु सांप की तरफ होता है, चूहा की गर्त में जाता, चूहा को खा के फिर उसी में रहता है, फिर हंसते पाओ तुम्हारा जी काट लेते कौन, ससुर महाराज क्या है। ऐसा ही साधु को भी कभी कभी करना पड़ता है, तो जानते ही कर्मी का बिल्डिंग है पड़ा हुआ, ये क्या करता है, इसको कुछ काम में नहीं लगता, अपने संस्कृत में लगा रहा है, तो हम यदि किसी बुद्धि खर्चा करके उसको ले लेंगे बिल्डिंग को, तो फिर भगवान की सेवा में लगाएंगे, और कृष्ण भगवान प्रचार प्रचार में लगेगा। इसलिए प्रभुपाद जी की नीति ऐसा ही, जब वो कोई साधु के साधु सबसे में सोचता है कृष्ण भावना को कैसे बढ़ाएगा, भगवान के प्रचार कैसे अधिक करेगा, उसके लिए कभी कभी प्रचार के लिए कभी इधर उधर बोलना पड़ता, तो उसमें दोष नहीं होता है, लेकिन अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, जो वो मिलने के लिए श्याम सुंदर को उन्हें मिलाने के लिए कभी किसी लेके आया किनको, अल्बर्ट फोर्ड को, वो हेनरी फोर्ड के ग्रैंडसन, अभी अमरीश को मिलाने में लाए, तो कहे कि बस रूपा जी कहे कि वो मिलाने के लिए लाए, लेकिन वो बातचीत नहीं, वो श्याम सुंदर पर बड़ा उद्वेग से बड़े मैंने प्रश्नता आए कि प्रभुपाद जी बड़ा खुश हुए, बोले कि प्रभुपाद आई वेरी इंपॉर्टेंट मैन है, आपको दर्शन करने आया है, प्रभुपाद को बैठ कर लिख रहे थे, हियर इज अल्बर्ट फोर्ड द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड, मिलाया इतने बड़े आदमी को आपको मिलाने के लिए, प्रभुपाद कुछ बोले नहीं, चुपचाप बैठे। फिर दूसरे बार और थोड़ा जोर से बोले, सोच रही प्रभुपाद कुछ मेडिटेट मैंने पूरा ध्यान में है तो सुना ही नहीं पड़ा, जोर से बोले तब भी प्रभुपाद ध्यान नहीं दिए, और थोड़ा जोर से बोले प्रभुपाद प्रसन्न हो गए, आई ब्रॉट सच ही है वीआईपी मैन, वी वी आई पी मैन दिस है अल्बर्ट फोर्ड ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड, फाउंडर ऑफ कौन सा फोर्ड कंपनी, पर देखिए ज्यादा अधर जो है तो देखे थोड़ा सीधे, व्हाई यू डिड नॉट ब्रिंग हुम हेनरी फोर्ड, अरे पता है कि वो चला गया, लड़के प्रभुपाद जी को पता था लेकिन कहीं स्कूल लेकिन नहीं आया क्यों। तो अम्बरीश प्रभु बोल रहे थे कि जब इंटरव्यू मैं अपन ले रहे थे तो कहे कि जब ये बात प्रभुपाद ने बोल रहे थे मुझे परमात्मा अंदर से बोल रहे थे ये व्यक्ति क्यों बोल रहा है बात, वो जानता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर जा चुका है, अभी तुम भी सक्सेसर बने हो, तुम भी यदि तुम्हारा धन को ऐसा ही भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे तुम भी ऐसे ही जाओगे, ये धन सब यही पड़ा रहेगा, कुछ लाए नहीं कुछ लेके नहीं जाओगे। तो साधु जानते हैं कि सब कुछ ले भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, प्रभुपाद जी कोई छोटा डोनेशन देता है उसमें इतना है, मतलब सब कुछ दे दो जो तुम्हारा है सब दे दो, सारे कृष्ण का है, हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, तुम जानते नहीं उसको कैसे यूटिलाइज करना, हम जानते इसकी यूटिलाइज कैसे किया जाता है। तो इसलिए कभी कभी साधु कृष्ण भावना के प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए कभी बाहर से ऐसे लोग सोचते कि कूटनीति कर रहा है, लेकिन उस कूटनीति और साधारण व्यक्ति कूटनीति करने में बहुत अंतर है, वो जो कुछ कर रहा है किसके लिए, भगवान के लिए, भगवान की महिमा को प्रचार को बढ़ाने के लिए आगे, लेकिन संसार के लोग कूटनीति करके अपना इंद्र तृप्ति करना चाहते, जो अपने इंद्र तृप्ति के लिए कूटनीति करेगा वो कहा जाएगा जमदूता की बांध के लेंगे, लेकिन भगवान के लिए किया सब कुछ है, ब्रह्म या अध्याय कर्मणि संगम त्यक्त्वा करति यः स पापेन न लिप्यते पद्म पत्र विवाम्भसः, ब्रह्म को ध्यान करके केवल भगवान की सेवा के लिए कर रहा है, ऐसे कुछ लेना देना नहीं फल में, ऐसा व्यक्ति को पाप कभी स्पर्श नहीं कर सकते, जैसे कमल के पत्ते में पानी पड़ने पर वो नीचे गिर जाते हैं। तो उसी प्रकार कभी कभी भक्तों को, भक्त ऐसे नहीं कि पूरे संपूर्ण रूप में है क्या आइसक्रीम की तरफ कूल होते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ता था कैसे होते हनुमान जी की तरफ क्रोधित होते, लंका को जलाया पड़े हनुमान जी, काम काम कृष्ण कर्मार्पणी क्रोध अभक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा साधु संगे हरि नाम, ऐसे इनको सब उपयोग करना जानना चाहिए, साधु जो उपयोग करना जानता है, क्रोध को हम पूरा सब एकदम माइनस जीरो पॉइंट पे नहीं ला सकते, वो रहेगा जो स्वभाव है, लेकिन इस कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, हनुमान जी जैसे लगाए हैं, काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समर्थ, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम क्रोध को कैसे उपयोग करना आचार्य लोग ने सिखाया है, भूख भेद लेके जाओ परिश्रम करना, रजोगुण का स्वभाव है कुछ करना पड़ेगा, तो इसलिए सब आचार्य की सेवा की क्या है, किताब लेके जाओ घूमते रहो, कोई झूठ कहने के जो प्रवृत्ति व्यक्ति का इतने आसान से नहीं छूट जाएगा तो क्या करेगा, लेकिन कृष्ण के लिए भी झूठ कह सकता क्या कर? पैसा कलेक्शन करना, लेकिन जाएगा लोगों को झूठ मूठ कहकर पैसा लाएगा, लोग पैसा दो कैसे भी पैसा निकाला उनसे, लेकिन यदि एक ना पैसा अपने जब में नहीं रखा सारे दे दिए किनको कृष्ण को, फिर वो बनता नहीं है कर्मबंधन उसको, उसमें दो यदि पांच पैसा पांच पांच सौ रुपये डाला जब में तो फिर फंस गया, तो इसलिए हमारा जो स्वभाव बना हुआ है वृत्ति तो उसको त्याग नहीं सकते, लेकिन इसको कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, ठीक है, कोई सत्वगुण की प्राधान्य किसके पास है वो पढ़ेगा अध्ययन करेगा पढ़ाएगा पढ़ेगा 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 अरे पढ़ाएगा जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह ब्राह्मण का गुण है, जो थोड़ा सा ईश्वर स्वभाव वाले है कंट्रोल करना चाहता सब कुछ फिर क्षेत्रीय के स्वभाव है फिर वो सब कुछ भी भगवान के लिए करेगा, भगवान मैनेजमेंट करेगा जो कुछ करेगा, फिर वैश्य कृषि गोरक्षा वाणिज्य स्वभाव है कुछ लोग की करेंगे स्वभाव के आधार पर, गौशाला है इतने सारे फार्म कम्युनिटी है सब सब कुछ फिर सेवा लेगा उसी रंग में, अशुद्र है तो सबके सेवा करेगा, लेकिन ये वर्णाश्रम वर्णाश्रम का नियम होने पर भी वैष्णव सभी से उन्नत, चाहे शूद्र हो वो जो नहीं कहते कि शूद्र है, वैष्णव सिद्धांत में सभी वैष्णव है, स्त्रीय वैश्य स्त्रीय वैश्य तथा शूद्र ते भी जानती परांगति मांग ही पार्थ विपासित पाप जन है, भगवान कहे जो मेरे को आश्रय करता है उसकी जीवन सफल हो जाता, चाहे कुछ भी हो, किसी भी स्थिति पर हो। तो ये है सिद्धांत। इसलिए भगवान ने अभी सिखा रहे राजनीति किनको, देवताओं। कहाँ से आया राजनीति? वो भगवान के पास है तब तो आया, उनके पास नहीं तो हमारे पास कहाँ से आएगा? सिखाया है कभी पता क्या कर लो, अभी समय नहीं हुआ इनके, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ, थोड़ा दिन वेट करो। और भगवान का इच्छा था कि समुद्र मंथन की लीला को आस्वादन करना, बात थोड़ा सा आनंद लेने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी के? कोई प्रश्न है? बोलो। क्या प्रश्न ही क्या नाम उसके? बात सेवन तो सबसे प्रश्न एक रहता है उसका। और किसका? सब भूख लग गया। कोई प्रश्न नहीं है? बोलो। हाँ बोलो। वहाँ प्रश्न पूछ रहे उधर उधर पीछे।
हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज। महाराज, जिस प्रकार से आपने बताया महाजन येन गथा सपन था, कि महाजन के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हमें चलना चाहिए, लेकिन भीष्म पितामह जिस प्रकार से उन्होंने अधर्म का साथ दिया और उनके, तो किस प्रकार से समझे उनके द्वारा जो उन्होंने कार्य किया?
भीष्म पितामह से सीखना चाहिए कि वचन को नहीं टलना चाहिए। पिताजी को वचन दिया था हस्तिनापुर सिंहासन में, जो भी बैठा रहेगा मैं इसको सुरक्षा प्रदान करूंगा। कभी हस्तिनापुर में सिंहासन में मैं स्वयं नहीं बैठूंगा, लेकिन जो भी हस्तिनापुर के सिंहासन में बैठा हुआ उसको मैं सुरक्षा प्रदान करूंगा। ये अपने वचन को केवल रक्षा करते थे। इसलिए उन्होंने जो बच्चा अपने पिताजी को बाणी दी थे उसी के लिए अनिष्ठिक ब्रह्मचारी रहे पर जिंदगी, क्योंकि पिताजी को कहे थे मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, पूरे अनिष्ट है भीष्म प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा टालते नहीं थे। इसको राम को ये सीखना चाहिए कि कैसे हम जो प्रतिज्ञा ले लेते फिर उसको टालना नहीं चाहिए, वचन को नहीं टालना चाहिए, तो उसी के लिए वो टाल लेते। लेकिन वो जानते थे कि धर्म के सपक्ष में थे, वो तो धर्म के अधर्म के धर्म के धर्म के विपक्ष में रहते, फिर उसको आशीर्वाद नहीं देते। किसको? अर्जुन को, पांडवों को आशीर्वाद नहीं देते विजयी भवन। वो चाहते थे कि ये विजयी बने, लेकिन फिर भी अपना वचन के आधार पर रहे थे अपनी स्थिति में। वो जानते थे कि मैं मरूंगा, ये तो मुझे मरेगा कि मारेगा कौन? इच्छा मुक्ति, आपने मुक्ति का उपाय भी बताया। जो अर्जुन कहाँ युद्ध कर पाता था भीष्म देव के साथ, है बहुत, जिस दिन पर इतनी मैंने क्या क्रोध, भीष्म भी ऐसा ही युद्ध करने लगे, अर्जुन बाणों की सामना नहीं कर पाता था। भगवान के शरीर में आगे दो चार बाण भी सड़ गए हैं, भगवान के शरीर में आ गए, खून निकालने लगे। तो भगवान जानते थे, तो बिल रस को आस्वादन करा रहे थे भगवान को, लेकिन भगवान देखे कि ये किसी लिए इतना हो रहा है, इतने युद्ध क्यों आज भीष्म? भगवान कहते कि मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा महाभारत युद्ध में, तो बोले कि अच्छा है, कहे थे कि अस्त्र धारण नहीं करोगे तो अर्जुन का अर्जुन सब मैंने बच नहीं सकता युद्ध में। देखा भगवान चाहते थे तो किसी कई उपाय से अर्जुन को बचा सकते थे अन्य किसी उपाय से, लेकिन अपने भक्त के वचन को स्वीकार करने के, स्वीकार करके अपना वचन को टाले कौन? भगवान उतर गए पहिया लेकर, मारने के लिए भागे हैं भीष्मदेव। तो इसलिए भीष्मदेव भीष्मदेव है, हैं महाजन है, वो धर्म के जानते थे कि। और लास्ट में बताया जो पांडव लोग ने रोने लगे, पितामह यदि आप मारना चाहते हैं मार दो अपने हाथ से, हैं भीष्मदेव ने कहे कि रो रो कर कहे कि देखो मैंने आपको पांडवा का नाम, मैं चाहता हूँ कि युधिष्ठिर हस्तिनापुर सिंहासन में बैठे, लेकिन जब तक मैं बैठा हूँ इधर युद्ध क्षेत्र में सेनापति के रूप में बैठा हूँ तो कैसे होगा? मैं तो युद्ध करूंगा, क्षेत्र के नीति फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो वो भी गाली देता कौन? दुर्योधन। सभी क्षेत्रीय जानते हैं कि मेरे साथ में कोई युद्ध नहीं कर सकता, गंगा पुत्र भीष्म के साथ कोई युद्ध करने वाले नहीं संसार में, लेकिन करूँ क्या? लेकिन ठीक है, एक उपाय है, वो शिखंडी को लाकर सामने खड़ा कर दो। किसकी? अर्जुन के सामने। शिखंडी को देखेंगे तो युद्ध नहीं करेंगे, बोले कि नपुंसक के साथ क्षेत्रीय युद्ध नहीं करते हैं, तो हिंजड़ा था पिछले जन्म में, कौन था? अंबा था, अब ये संकल्प है भीष्म की मृत्यु के कारण बनने के लिए वो ये शिखंडी के रूप में आया था। यह रहस्य पांडव को नहीं पता था, भीष्म देव ने स्वयं बताया कैसे तुम मुझे मारोगे, युद्ध से हटाओगे, तो कहे कि इसको लाके रखो सामने, शिखंडी को खड़ा करो, शिखंडी को देखने देखते ही मैं युद्ध नहीं करूंगा, धनुष बाण रख दूंगा, लेकिन जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण रहेगा कोई मुझे हटा नहीं सकता। तो स्वयं मृत्यु के कारण स्वयं बताया, इसलिए महाजन है धर्म के पक्ष में है, अधर्म के पक्ष में नहीं है, बाह्य रूप में दिखाई पड़ती कि अधर्म पक्ष में है लेकिन धर्म के पक्ष में थे, चाहते थे कि धर्म की विजय हो, अधर्म का नहीं, चाहते थे कि भगवान की ही विजय हो, भगवान जिस पक्ष में बैठे और पांडवों की विजय हो, इसलिए भगवान ने गए अंतिम समय में पांच पांडवों को लेकर उनके पास गए, राम विष्णु सहस्रनाम पढ़ते हैं जो लोग, कौन गाया विष्णु को सहस्रनाम, भीष्म देव की मुखारविंद से जो निश्चित भगवान की गुणगान वही विष्णु सहस्रनाम से प्रचार हुआ सारे समाज में, भगवान ने स्वीकार किया इसकी विष्णु देव की स्तुति को, है स्तुति भी है भागवत ने, और विष्णु सहस्रनाम भी उनकी मुखारविंद से निकला हुआ है। तो इसी प्रकार वो महाजन है, किसी वैष्णव का वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान ना बुझे, वैष्णव की क्रिया मुद्रा को बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझते, उनके आचरण किसी बाह्य रूप से क्या कर रहे हैं, उनके अंतकरण में क्या चल रहा है, ठीक है। हाँ हाँ क्या बोले, झूठ बोलना की
झूठ बोलने की जो टेंडेंसी है,
आप झूठ बोलते हो, टेंडेंसी है आपकी, सच बोल रहे कौन सी,
मतलब
सबके पास में है झूठ बोलने की थोड़ा थोड़ा टेंडेंसी है, जो आपने को थोड़ा दिखाने के लिए देखो मैं कितना है,
मतलब जब हम सेवा में इसको लगाते हैं तो कई बार आदत बढ़ जाता है कि हमको
फिर सेवा में इसे जानबूझ कर लेकिन इमरजेंसी में लगाना, हमेशा नहीं है, हमेशा नहीं लगाना है, याद जो याद है तो अपने अपने के लिए नहीं लगाना है इसको, है क्या सेवा करते हैं,
प्रीचिंग,
प्रीचिंग में किसका प्रीचिंग, किताब डिस्ट्रीब्यूशन या मनी कलेक्शन क्या कर रहे,
कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन और वो
बुक डिस्ट्रीब्यूशन
बोले, और यूथ प्रीचिंग,
यूथ प्रीचिंग कर रहे हैं, तो वहाँ क्या झूठ बोल रहे हैं,
कभी कभी कैंप के लिए अगर लाना
हो तो ठीक है, ऐसा नहीं हमेशा ये नहीं, कभी कभी इमरजेंसी में आता है, जैसे रघुनाथ दास को समय इमरजेंसी में, सनातन को समय इमरजेंसी में, बस
महाराज मतलब समय बहुत बार ये लगने लगता है कि भगवान का फिर कृपा कम देखते हैं और लगने लगता है कि हम थोड़ा
वही दृष्टांत दो, इस प्रकार झूठ कहते हो, राम इसको सुधारण कैसे कहना नहीं था और क्या कहना था, बोलो एक दृष्टांत दो कि कहा आपने झूठ कहा,
कभी कभी जैसे जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं
तो क्या के लिए,
रजिस्ट्रेशन के लिए कि मतलब सेशन के लिए, तो वो हमसे पूछते हैं कि मतलब कैसे इससे मतलब यूजफुल होगा हमारे लिए, तो उस समय एग्जैक्टली उनको ये नहीं बताते कि दिस इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल, थोड़ा उनको ये बताते कि इससे आपका कंसंट्रेशन थोड़ा ये सही होगा, या
कुछ क्लियर नहीं क्या बोल रहे हैं,
अच्छा
है? हाँ कैंप के लिए बोला, तो क्या इसमें इसमें झूठ क्या, तो माइंड कंट्रोल होगा ये सच है, झूठ कहाँ बोल रहे,
लेकिन बिल्कुल और भी चीजें बताते हैं जो मतलब थोड़ा सा उससे मतलब एग्जैक्टली वो नहीं होता, इंड हाँ बस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और भी बहुत सारी चीजें,
तो ये सारे होगा भक्त जो बनेगा सब कुछ होगा ना, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा सब कुछ, सब बोले आप खुद ही मतलब कन्विंस नहीं हुए इसलिए आपको लग रहा है कि झूठ है, झूठ नहीं है, जो भक्त बनेगा उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा है, इसका सब कुछ हो कल्याण होगा है, कृष्ण भक्त के चरित्र में सभी सद्गुण रहता है, भक्त बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं
फिर मतलब ये
लगता है कि हम भगवान की कृपा पे कम डिपेंड रहता हूँ और ये लगता है कि मैं थोड़ा सा झूठ ये सब बोल के काम चल जाएगा, तो
झूठ नहीं है वो बात क्या होती है, हमारा इसके अनुभव नहीं है, हम जैसे सुने ऐसे ही बोल रहे, अंतकरण में सोच रहे कि ये भी झूठ कह रहे, खुद को कन्विंस नहीं कि मैं भक्त बन गया तो मैं महान चरित्रवान बनूंगा, मेरे चरित्र के मेरे कैरेक्टर का डेवलपमेंट होगा, ये खुद ही कन्विंस नहीं, इसलिए आपको लग रहा है कि झूठ बोल रहे, लेकिन स्टेटमेंट झूठ नहीं है, तो कृष्ण भक्त बनेगा, इसका चरित्र का गठन होगा, इसको सब कुछ सुविधा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कृष्ण भक्त होने से सब मिलेगा, सब मिलेगा, कृष्ण भक्त हो तो इसमें झूठ नहीं है, ठीक है, ओके। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।